Listen. देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं उनको समझ रहे थे। लास्ट टाइम हमने 4 मंत्र कर लिया था, विश्वानि देव, हिरण्यगर्भ या आत्मदा या प्राणतो। रेस्ट ऑफ जो 4 मंत्र हैं तो आज इनको समझने की कोशिश करेंगे। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशा विधेम। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल 121वां सूक्त और 5वां मंत्र है और यजुर्वेद में रिपीट होता है 32nd चैप्टर और 6th मंत्र 32वें अध्याय में 6ठा मंत्र के रूप में। इसको ऑर्डर में ट्रांसलेशन देखते हैं। ये न द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसके द्वारा ये द्विलोक जो ब्रिलियंट यूनिवर्स है, मतलब जो स्काई है जिसमें स्टार्स प्लैनेट सोलर सिस्टम है चमकीला जो ब्रिलियंट वाला, ऐसा जो आकाश है उस जिसने उसको मजबूत बनाया स्ट्रांग बनाया। पृथ्वी च दृढ़ा, और जो पृथ्वी जैसे जो प्लैनेट्स हैं उनको भी जिसने फॉर्म बनाया। ये न स्वः स्थवितम ये न नाकः, और जिसने इस संसार में जो लाइट है प्रकाश है प्रकाश को भी स्थापित किया एस्टैब्लिश्ड किया संसार के वॉल्ट के रूप, और जिसने मिड स्पेस में एक प्लैनेट और स्पेस के बीच में जो जो स्पेस होता है मिड स्पेस होता है जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, उस अंतरिक्ष में जिसने उस अंतरिक्ष को भी जो एयर रिल्म होता है जहां पर हवा वायुमंडल होता है एयर सिस्टम होता है उसको भी जिसने मेजर्ड किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं उस आनंद स्वरूप कहा मिला आनंद, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए मैं अपने हवि अर्पित करता हूं। जिसने इस आकाश को वायुमंडल को, आकाश मतलब स्काई वायुमंडल मतलब मिड स्पेस, और उसके अंदर जितने भी स्टार्स हैं प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम है जिन्होंने इन सबको अपने अपने जगह पर एस्टैब्लिश किया। जब पिछले बार हम बात कर रहे थे हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे सूत्र में कि सृष्टि से पहले क्रिएशन से पहले कि क्या सिचुएशन था यूनिवर्स का, ना वहां कोई एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ था नॉन एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ था, वो तो धुंधला धुंधला सा फॉगी फॉगी सा मतलब कुछ नहीं पता था। वो है क्रिएशन से पहले और डिसोल्यूशन स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन और प्रलय की अवस्था। वहां से जब परमात्मा संसार को सृष्टि करने को साइक्लिक मोड में दोबारा सृष्टि करता है उस जो वो जो हलचल पैदा होता है एटॉमिक लेवल पर यूनिवर्स का जिसको हम कहते हैं सत्व रज तम, उस हलचल वाले अवस्था को हिरण्यगर्भ कहा। उसके बाद जब संसार सृष्टि होती है ये जो क्रिएशन बनता है जिसमें आपके सोलर सिस्टम्स आते हैं आपके स्टार्स आते हैं मतलब सौरमंडल नक्षत्र और पृथ्वी प्लैनेट्स आते हैं, और जब प्लैनेट्स बनते हैं और सोलर सिस्टम बनते हैं उन बीच में जो एक स्पेस बनता है मिड स्पेस जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं जो नॉर्मली वो वायुमंडल होता है एयर रिल्म ऑफ एयर होता है, उन सबको भी परमात्मा ने ही आज इट इज एस्टैब्लिश किया। अगेन दोबारा कहें सारा संसार जो यूनिवर्स है वो रैंडमली नहीं बना है, या कोई बनते बनते वैसे ही नहीं बन गया है, जैसे किसी बहुत सारे आप नेचुरल ऐसे प्लेसेस जाते हैं घूमने के लिए, जहां पानी बार बार गिरने के कारण पत्थरों में अलग अलग तरह के निशान बन जाते हैं। तो उसी को एग्जाम्पल देखें जो दुनिया ऐसी बन गई। तो जो रैंडमली बनता है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता, जो रैंडमली बनता है उनके बीच में इतनी खूबसूरत इतना ब्यूटीफुली सिनर्जी नहीं होती है, एक दूसरे के पर डिपेंडेंस नहीं होता है। तो अगर हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करता है, हर चीज का पूरे कॉस्मस में कोई ना कोई रोल है, वो छोटा है बड़ा है हर एक की अपनी रोल है। इवन इकोसिस्टम में भी हम देखते हैं जो छोटी छोटी लाइफ्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, अब उनका भी इकोसिस्टम को बनाए रखने में कुछ हेल्प होता है। तो ये सब चीजें रैंडमली नहीं होता है, इनके पीछे वेल ऑर्गेनाइज इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम काम करता है। तो वो इंटेलेक्ट किसके पास है? कोई मैटर या जड़ पदार्थ में तो इंटेलेक्ट होता नहीं है, इंटेलिजेंस तो सिर्फ चेतना में होती है। जहां जहां कॉन्सियसनेस होगा, चैतन्य होगा, वहां इंटेलिजेंस होगा। पशु पक्षियों में होता है क्योंकि उनमें भी प्राण है, उनकी लिमिटेड हो सकता है। इंसानों में भी होता है क्योंकि उसमें प्राण है। वही इंसान और वही जानवर, अगर वो उनकी आत्मा उनमें से निकल जाए, मतलब चेतना या कॉन्सियसनेस उसमें निकल जाए, फिर वो डेड बॉडी बन जाते हैं। फिर वो डेड बॉडी किस काम का होता है? कुछ नहीं, सिवाय कि वो सड़ता है, गलता है, और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बॉडी या माइंड या इंटेलेक्ट सब कुछ नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो डेड बॉडी में क्यों नहीं करते? समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिस्ड हो गया, जिसके कारण जिस बॉडी से सब कुछ हो रहा था अब नहीं हो रहा है। इसी तरह ये यूनिवर्स में जो कि एक बॉडी का है, बॉडी भी मैटेरियल है ना, बॉडी है, इस यूनिवर्स में सब कुछ मैटर के द्वारा या ये जो फिजिकल बॉडी के द्वारा नहीं होता है। ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक कि बॉडी फंक्शन करता है, इट सीम्स लाइक कि सारा यूनिवर्स, मैटेरियल यूनिवर्स अपने आप फंक्शन करता है। पर कब तक आपको ऐसा लगता है? जब तक आप कोई जिंदा है, शेर हो, भालू हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, हाथी हो, ये सब फंक्शन करते हुए लगते हैं। लगता है मानो प्राण शरीर फंक्शन कर रहा हो, लगता है जैसे माइंड काम कर रहा हो, इंटेलिजेंट से ही सब कुछ हो रहा हो। पर जैसे ही कुछ चीजें मिस्ड हो जाता है, फिर वही चीजें फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अगर मैटर को ही फंक्शन करना होता तो डेड बॉडी में ही फंक्शन करता, तो कोई ना कोई मिस होता है। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर तुम्हें यूनिवर्स को, कॉस्मस को समझना है, स्ट्रक्चर को, तो अपने शरीर को समझो। मीन्स इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मस, यू कैन लर्न फ्रॉम योर बॉडी स्ट्रक्चर। पिंड से ब्रह्मांड को समझो, और उल्टा भी कर सकते हो। या तो आप अगर अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को समझना है तो यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को समझो। दोनों में एक खूबसूरत हार्मोनी है। और बेसिक चीजें क्या है? इट्स ऑल अबाउट मैटर एंड कॉन्सियसनेस, चेतना और जड़ पदार्थों का मिश्रण है। तो परमात्मा ही इस सारा संसार को डिलिबरेटली प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटेलेक्चुअली बनाता है, जिसकी जहां जैसी जरूरतें होती हैं। हवा की जरूरत है, अगर कोई लाइफ को आना है तो हवा तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जहां जहां लाइफ्स को आना है, उससे पहले वहां ऑक्सीजन को आना पड़ता है, तो मिड स्पेस बनता है। तो वो परमात्मा जिसने द्युलोक को, वो चमकीले प्रकाश, चमकीले लोक को, जो ब्रिलियंट स्पेस है, उसको भी स्थापित किया, और पृथ्वी उसके अंदर काफी सारे प्लैनेट्स को भी स्थापित किया। ऐसा तो नहीं कि ये धरती ही अकेला स्पेस है, वो प्लैनेट है जिसके अंदर हम सब जिंदा है। इतने बड़े स्पेस है, इतने सारे सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, इतने सारे गैलेक्सीज हैं। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि इसी सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट्स हैं और उनमें अर्थ प्लैनेट धरती जो है उसी में हम प्राणी हैं। कितने हजारों हजारों ऐसे गैलेक्सी होंगे, सोलर सिस्टम होंगे जहां प्लैनेट्स होंगे, वहां लाइफ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनिवर्स हमेशा हैपनिंग मोड में होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है। आपकी लाइफ में भी देखिए, समथिंग इज हैपनिंग एवरी मोमेंट, कुछ ना कुछ हर मोमेंट आपके शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आपको पता चले ना चले, आप बढ़ रहे होते हैं, आप घट रहे होते हैं, है ना। खाना पक रहा होता है, खून सब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो रहा होता है, आप बीमार पड़ रहे होते हैं, आप ठीक हो रहे होते हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन। ये यूनिवर्स का रूल है, ब्रह्मांड का भी, आपके शरीर में भी। तो कहीं नए नए प्लैनेट्स बन रहे होते हैं, कहीं धरती जैसा प्लैनेट एस्टैब्लिश प्लैनेट है, कुछ प्लैनेट्स मर रहे होते हैं, कहीं लाइफ बिल्कुल नहीं है, कहीं लाइफ की शुरुआत है, कहीं लाइफ बिल्कुल मिडिल में है। जैसे हमारे यहाँ अभी हम युगों की जो कंसेप्ट मानते हैं, कलयुग को बने, अभी कलयुग का जो टाइम पीरियड है वो 4,32,000 है ना, तो 432,000 ईयर्स का कलयुग है। अभी तो सिर्फ 5,000 हुआ है साल, 5,000 कितने साल, मतलब अभी इसको 4,00,000 कितने साल तक इस युग में रहना है। ऐसा नहीं कि सब सब चीजें ऐसे ही रहेगा, चेंजेस भी तो पार्ट ऑफ नेचर है ना, एवरी मोमेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग, चीजें एग्जिस्ट करते हैं पर फॉर्म बदलता रहता है ना। आज अमेरिका में हरा भरा है, क्या पता 1,000 साल के बाद ये रेगिस्तान बन जाए, अरब कंट्री जैसा बन जाए और कोई दूसरा देश उसकी जगह ग्रीनरी बन जाए। तो जो चेंज ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, वो ज्योग्राफिकली हो, वो ह्यूमन नेचर में हो, कोई लाइफ समाप्त हो जाता है, नए लाइफ आ जाते हैं, कहीं लाइफ कम हो जाते हैं, कोई लाइफ ज्यादा हो जाती है, कुछ पीरियड के लिए कोई भी लाइफ नहीं होता है, फिर सर बहुत सारे लाइफ बन जाते हैं, तो वो तो चेंज चलता रहेगा। तो ये जो संसार है, इस संसार में कितने सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, डेड प्लैनेट हैं या लाइव प्लैनेट हैं, या डाइंग प्लैनेट्स हैं या बर्निंग प्लैनेट्स हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग है। और ये सब परमात्मा अपनी व्यवस्था के हिसाब से उन सब चीजों को बनाता है। और यो अंतरिक्षे रजसो विमान, और जिसने ये जो अंतरिक्ष है, आकाश और प्लैनेट, इन दोनों के बीच का एक डायमेंशनल फैक्टर है कि आप धरती पर हैं, तो धरती से आकाश के बीच की जो गैप है उसी को हम मिड स्पेस कहते हैं। अगर आप धरती में नहीं होंगे, आप मार्स में होंगे या और कहीं किसी प्लैनेट में होंगे, उस प्लैनेट से आकाश के बीच का जो स्पेस है उसी को हम मिड स्पेस कहते हैं। और क्योंकि धरती एक लाइफ प्लैनेट है, उसमें लिविंग बींग्स रहते हैं, तो ये जो मिड स्पेस है, जो फुल ऑफ एयर है, अलग अलग टाइप के ऐसे एयर्स हैं, वायुमंडल हैं, जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हमारे लिए है, जो प्लांट्स को चाहिए वो प्लांट्स के लिए है, हर एक को जिसको जिस तरह का एयर चाहिए सब कुछ उसके अंदर है। तो परमात्मा ने अंतरिक्ष में उस वायु को भी स्थापित किया, विमान हम मतलब मेजर किया कि इतना बड़ा होना चाहिए। कस्मै देवाय हविषा विधेना, ऐसे जो आनंद स्वरूप परमात्मा को हम अपने हविषे, हम हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम ऑफरिंग करके हम अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। कंटिन्यूअसली आ रहा है कस्मै देवाय, कह मतलब हु भी होता है, कौन भी होता है संस्कृत में, मतलब क्वेश्चन भी, और कह का मतलब आनंद भी होता है, सुख भी होता है, ब्लिस भी होता है। तो वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, वो जो सारा संसार का सृष्टि करता है, जिसने द्विलोक को बनाया, अंतरिक्ष को बनाया, सूर्य चांद को बनाया, उस परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, हम भक्ति भाव से उसको अपनी ऑफरिंग या जो भी हमारे पास है हम ऑफर करते हैं। इसमें खूबसूरत एक हिंदी में जो कविता के रूप में हम गाते हैं, तारे रवि चंद्रा दिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है, तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही ध्यान हम धरे, शुभ भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करे। देखिए जब आप भक्ति करते हैं ना, परमात्मा की भक्ति करते हैं, किसी की भी आप भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है? डिवोशन, वो तो अंग्रेजी में हो गया, पर उसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? एब्सोल्यूट प्रेम, एब्सोल्यूट लव, सुप्रीम लव, सातु परम प्रेम रूपा। ये जो प्यार की जो पराकाष्ठा है, जो कल्मिनेशन है, उसी को भक्ति कहते हैं। वो भक्ति आप इंसान से करते हैं, जानवरों से करते हैं, अपनी गाड़ी से करते हैं, पैसे से करते हैं, घर से करते हैं, या परमात्मा से करते हैं, वो मैटर नहीं करता। वो एक इमोशंस है। वो इमोशनल जब आप बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं पॉजिटिव इमोशन के, उसी को हम भक्ति कहते हैं। जब आपका प्यार होता है एक सुप्रीम लेवल पर, एक हाई लेवल पर जब आप प्यार होने लगता है, होता क्या है, तो आप उसके गुणों की बखान करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, कहते हैं ना कि क्या क्या अच्छाइयां उसके अंदर है। और वो बड़े मजेदार है, ह्यूमन इमोशन उसकी बड़ी मजेदार। देखिए उसी व्यक्ति से जैसे ही आपका नफरत हो जाता है, द मोमेंट यू स्टार्टेड टू हेट हर आर हिम, तो फिर आपको उसमें एक भी अच्छाइयां नहीं दिखती, आप सब बुराइयां दिखती है। आप बोलो हजारों की लिस्ट बना दोगे, ये बुराइयां हैं। और जब प्यार होने लग जाता है, फिर वो बुराइयां कहीं गायब हो जाती है, दिखती नहीं है, सिर्फ अच्छाइयां दिखने लगती है, अच्छाइयां दिखने लगती है। सो इसीलिए कहते हैं ये नजर की प्रॉब्लम है। वो तो हर ह्यूमन बींग में अच्छे बुरे होते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर प्यार करने वाले को कोई बुराई नहीं दिखता और नफरत करने वाले को कोई अच्छाई नहीं दिखता। तो जब आपको परमात्मा से प्यार होता है, देखिए बड़ा सिंपल चीज है, बुरा नहीं मानना, रिलीजियन तो हिपोक्रेसी होती है, प्योरली हिपोक्रेसी, जहां रिचुअल्स मैटर करते हैं और रिचुअल्स में ऑनेस्टी कम होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर को पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं और ऑनेस्टली करते हैं। यह मंत्र उसकी बात नहीं कर रहा है जो रिलीजियसली जो चीजें आप कर रहे हो, मन में तो कुछ है ही नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन क्यों व्यक्ति रिलीजियस होता है या रिचुअल करता है, दिस इज डिफरेंट थिंग। मंत्र सिर्फ का जो भाव है, वैदिक शास्त्रों का जो भाव है, आपके अंदर ऑनेस्टली भक्ति आती है, प्रेम आता है परमात्मा के प्रति, तो आप उसके गुणगान करते हैं ना। आप अपने पति के, पत्नी के, गाड़ी के, घर के, बॉयफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड के, बच्चों के गुणगान ही तो करते हैं जब प्यार होता है। गुणगान मतलब उसकी ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसको बताते हैं, जो उसकी काम है उसको बताते हैं। तो परमात्मा की क्या क्या बड़ाइयां है, क्या उसके काम है, क्या ग्लोरी है, क्या ग्रेटनेस है, क्या वो काम करता है, वो समझने के लिए, समझाने के लिए मंत्र है। जब ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो भक्ति के मंत्र हैं, तो जब आप ईश्वर के हर एस्पेक्ट को समझते हैं, वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उसका रोल क्या है, जब हम इन सब चीजों को समझते हैं, तो भक्ति और ज्यादा मजबूत होती है, प्रेम ज्यादा बढ़ता है। जब आप जिससे प्यार करते हैं, आपको उसके बारे में रोज रोज नई नई अच्छी अच्छी खबरें मिले, तो डेफिनेटली आपका प्यार और बढ़ने लगता है। इसी तरह जब भी आपको परमात्मा के प्रति भक्ति करना हो, भक्ति के साथ क्या करना जरूरी है, हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्याय करो, पढ़ो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ो जिसमें ईश्वर के बारे में ज्यादा बताया गया, उसे क्या होगा, आपका प्यार और मजबूत होगा, आपकी विश्वास और मजबूत होगा। जब आप ऐसे किसी जगह पर घूमने जाते हैं जहां नेचुरल मिरेकल्स आपको दिखा, मिरेकल मतलब नेचर में ऐसी चीजें जो पहली बार आपने कहीं नहीं देखा है ना, मिरेकल जैसे लगता है, जैसे समझ लीजिए आप कोई ऐसी जगह जाते हैं, ठंड का बारिश हो, बर्फ भी गिर रहा हो है ना, जो फूल ऑफ हो, आइस और स्नो हो, और वहां गर्म पानी का एक फाउंटेन निकलता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस कहता हूँ, जो पहली बार हम वो जो उत्तराखंड में वो बद्रीनाथ क्या कहते हैं केदारनाथ वगैरह गए, तो इतने सारे बर्फ गिरे हुए और उसमें हर जगह वो स्ट्रीम निकला हुआ है गर्म पानी का, तो जो ब्लाइंड भक्त हैं वो तो डुबकी लगा देते हैं, वो अलग बात है कि पुण्य मिलेगा। पर अगर आप जेन्युइनली देखो, आपको लगता है देखो जहां इतने ठंड है वहां गर्म पानी की भी धारा बहती है, ये नेचर की मिरेकल है। पर फिर आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ता है, वो कितना पावरफुल है, कितनी है ओमनीपोटेंट है, वो कहीं कुछ भी सिस्टम बना रखा है। आप जब सूरज को ठीक देखते हो, जब आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हो, आप जब कॉस्मोस की यूनिवर्स की फंक्शन को देखते हो, आप जब प्लांट्स की जो साइकिल को देखते हो, तो एक अजीब सा वो तो पैदा होता है ना, आश्चर्य और पैदा वॉकफुलनेस पैदा होता है ना, उसी से आपके परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ता है। ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तवितम ये न नाक, यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मे देवाय हमिषा विधेम। नेक्स्ट मंत्र है ओम प्रजापते नक्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्यामपतयोरयीणाम्। ये तीनों वेदों में मिलता है ये मंत्र, ऋग्वेद के 10वें मंडल 121वां सूक्त 10वां मंत्र है, यजुर्वेद में 10वें अध्याय 29वां मंत्र, और अथर्वेद में 7वें कांड 80वें अध्याय और 3रा मंत्र है। अंग्रेजी में बोलूं तो ऋग्वेद में 10th बुक 121st चैप्टर 10th मंत्र है, यजुर्वेद में 10th चैप्टर 29th मंत्र है, अथर्वेद में 7th बुक 80th चैप्टर एंड 3rd मंत्र है। मंत्र का पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रजापते नत्वत अन्यः, मैं उसको ब्रेक डाउन करके ब्रेक करके लिखा हूं जिससे कि हर वर्ड आपको क्लियर हो। हे प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स, प्रजाओं के पति, त्वत अन्य तुम्हारे अलावा, अपार्ट फ्रॉम यू, ना नहीं है क्या कोई भी, एतानी विश्व जातानी परिता बभूव, इस संसार में जो कुछ भी पैदा हुआ है बना है, उन सबको घेर के रहने वाला, उन सबके अंदर परवेट करने वाला तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हे प्रभु, यत कामाह, जिस इच्छा से, जिस डिजायर से, कामना से, ते जुहुमह, हम तुम्हारी प्रार्थना पूजा करते हैं, तत नह अस्तु, वो हमारी पूरा हो, वयम श्याम पतयो रैणम, हम रई कहते हैं धन या संपत्ति, हम धन संपत्ति के या प्रॉस्परिटी के, वेल्थ के, ट्रेजर के स्वामी बने। खूबसूरत शब्द है प्रजापति। प्रजा कहते हैं एटिमोलॉजिकली देखें, जो कुछ भी, ज मतलब जन्म होना, संस्कृत में ज जो वर्ड है, इट मीन्स इट इज समथिंग विच इज ब, जलज जो पानी से पैदा हुआ, पंख किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं, लोटस को, या दूसरे जो चीजें बनते हैं, पंकज जो कीचड़ से पैदा हुआ, ज अज जो पैदा ही नहीं हुआ, आत्मा को कहते हैं अज जो पैदा ही नहीं हुआ वगैरह। तो प्रजा जो पैदा हुआ है, एनीथिंग विच इज बर्न इज प्रजा, पैदा होने का मतलब सिर्फ पेट से नहीं, एनीथिंग विच इज मेड, विच इज क्रिएटेड, विच इज बर्न, जो भी बना है, पैदा हुआ है, वो सब प्रजा है। वो सूरज भी हो सकता है, ईंट पत्थर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, माइक टेबल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मैं आप पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो भी बना है वो सब प्रजा है। तो इन प्रजाओं का पति, पालक, जो पालन करने वाला, जो उनका मास्टर है, जो उनको कंट्रोल करता है, जो उनको रेगुलेट करता है, जो उनको नॉरिश करता है, नर्चर करता है, वो कौन है, जो भी है उसी का नाम है प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। तो प्रजापति का लिटररी ट्रांसलेशन क्या है, लॉर्ड रूलर ऑफ क्रिएचर्स, जो कुछ भी बना है उन सबका जो पालन करने वाला, ऐसे प्रभु जो सारे संसार के सभी क्रिएचर का पालन करने वाला प्रजापति, न त्वद एतत अन्य, मंत्र देखिए, न त्वद अन्य, तुम्हारे अलावा, अपार्ट फ्रॉम यू, एतानी विश्व जादानी न परिता बभूव, और कोई भी ऐसा नहीं जो सारे संसार में सब जगह फैला हुआ है। तो परमात्मा कहां है? जी सब जगह है, मतलब सब जगह मतलब हवा में है, जी है, पानी में है, है, घर में है, है, बाथरूम में है, कीचड़ में है, जंगल में है, अच्छे में है, सब जगह है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, बाहर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। वो गंदगी में भी है, अच्छा में भी है, साफ में भी है ना, खराब लोगों में भी है, अच्छे लोगों में भी है, पहाड़ों में भी है, झरने में भी है, रेगिस्तान में भी है, सूरज में भी है, आकाश में भी है, स्पेस में भी है, हर पार्टिकल्स के अंदर है, सर्वव्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है। हे प्रभु, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं जो ये समस्त प्राणियों के अंदर, क्रिएचर के अंदर समाया हुआ हो, वो अकेला है। हमेशा हम क्लासेस में भी और यहां भी वही चीज शास्त्रों में देखते हैं कि वो परमात्मा ईश्वर एक ही है, वो अकेला है जो सारे संसार में फैला हुआ है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। इसीलिए जब भी किसी को मन करे कि मुझे परमात्मा को या भगवान को पाना है तो कहां जाने की जरूरत है? मैं कहूं, आप कहें, या किसी आप रिलीजियस लीडर को कहेगा, वो कहेगा चलो एक हमारे मंदिर में चलो, हमारे मस्जिद में चलो, चर्च में चलो, इजराइल में जाओ, मदीना में जाओ, काशी में जाओ, बनारस में जाओ, या जिसका जहां जहां पर वो धर्म क्षेत्र है, पिलिग्रिमेज है, मंदिर है। और नहीं तो आजकल ये भी सब बहुत सारे जगह, तो ये भी आप ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहे, अब तो बाबाओं के आश्रम, जो ये जो कल्ट बना के बैठे हैं सब गुरु बन के, वो गुरु के आश्रम में जाओ, है ना, वो गुरु के कल्ट में जाओ, सब सब कुछ वहीं मिल जाएगा। पर हमारे शास्त्र कहते हैं तुम्हें अगर उसको पाना है, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत है, यू हैव टू गो इनसाइड। और वो जो उसकी जो मेथड है, जो जॉइनिंग का मेथड है, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जब तुम दुनिया के चीजों को जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो आपकी इंद्रियां बाहर की ओर जाते हैं, एक्सटर्नली जाते हैं ना भाई। आपको किसी को देखना है तो आंख खोल के बाहर देखोगे, किसी को सुनना है तो बाहर से ही आएगा, एवरीथिंग इज एक्सटर्नल। पर जब आपको परमात्मा को पाना है, मिलना है, भक्ति करना है, तो आप कहीं भी जाते हो, आपको क्या बोलते हैं? आंखें बंद करो, बाहरी दुनिया के सुनना बंद करो, देखना बंद करो, बंद। तो क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे आंख कान नाक सब खुले रहेंगे तो तुम ज्यादा बाहर डिस्ट्रैक्टेड हो, और वो बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर जाने की जरूरत है। तो तुम्हें अंदर मिलेगा ना, है सब जगह। तो आप कहोगे अगर सब जगह है तो मैं कहीं भी मिलूं, अंदर ही क्यों जाऊं? अगर मुझे किसी ने कहा कि मंदिर जाकर मिलो तो मैं मंदिर में भी मिल सकता हूं। तो शास्त्र कहते हैं कि है तो सब जगह, पर तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी लिमिटेशन है, तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारे माइंड, ये मैटेरियल है, और मैटेरियल चीजें सिर्फ मैटर से ही कनेक्ट हो पाते हैं। तुम्हें उसको पाना है तो तुम अपने आत्मा के कॉन्शियस लेवल पर पाओगे। तो बोले कहां मिलेगा? तुम्हारे हृदय में मिलेगा। वो गीता में पढ़ते ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब कहां रहता है परमात्मा? बोले तुम्हारे हृदय में रहता है। हृदय समझते हैं, हार्ट। और जब हम हार्ट की बात करते हैं, फिर आप वो ये पान पत्ते वाली हार्ट की बात सोचने लग जाते हो। पान पत्ता समझते हैं ना, वो बेटल लीफ की तरह, जो वो जो आप क्या कहते हैं, ये वैलेंटाइन डे में जो आप कार्ड में छपा हुआ होता है ना, तो वो एक पान का पत्ता, उसमें एक तीर होता है। अब ये तो इमेजिनरी, इमोशंस यहां नहीं होता है। ये तो पंपिंग मशीन है ये हार्ट, ये तो सिर्फ खून क्लीन करने के लिए होता है ना। यहाँ गुस्सा है, ना यहाँ प्यार है, ना यहाँ इमोशन, यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसको आप हृदय या हार्ट कहते हो। हमारे शास्त्र में जब हृदय कहा बोला ये यहां पर है। वैसे भी अगर आप मेडिकली देखो आपके सारे इमोशंस आपके ब्रेन से आते हैं और ब्रेन तो यहां पर है, यहां थोड़े ही। और हमारे स्पिरिचुअल फिलोसोफर भी यही कहते हैं कि जब कहते हैं हृदय में है वो हृदय ये नहीं यहां पर है, मस्तक के नीचे कहते अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर एक छोटा सा जगह है, वहीं पर आत्मा रहती है। तुम्हारी जो आत्मा सोल वो वहीं रहता है, वो एक देशी है, लिमिटेड है आत्मा। जो हमारे सोल जो पूरे बॉडी को फंक्शन करता है बिल्कुल वो चिप की तरह कंप्यूटर में या फोन में या नैनो आजकल टेक्नोलॉजी आता है ना, छोटी सी चिप लगाते हो तो सारा फंक्शन करता है। तो आपकी जो सोल है उस चिप की तरह है, वो एक जगह फिट है और उसके लिए जगह भी बता दी गई, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। वो ब्रेन हृदय में, हृदय मतलब ये हार्ट वाला चेस्ट के नीचे वाला नहीं, ये सर के नीचे वाला, उसी को हृदय कहा। वहीं से आपके प्यार आता है, इमोशंस आते हैं, लव आता है, अफेक्शन आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है। और क्यों? क्योंकि आत्मा वहीं रहता है। तुम्हारा जो ओरिजिनल फॉर्म है, इस बॉडी का जो मालिक है रति, जो गाड़ी का जो मालिक है, जो पीछे बैठता है, वो यहीं बैठा होता है। ये शरीर तो गाड़ी है, वहीं बैठा होता है। तो तुम्हें कहां मिलेगा परमात्मा? बोले वहीं मिलेगा जहां तुम हो। तुम्हें बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, वो तो है सब जगह, पर तुम्हें तो वो वही मिलेगा जहां तुम हो, तुम वहीं पर फोकस करो। प्रजापति लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स, तुम्हारे अलावा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं जो सारे संसार में फैला हुआ है, समाया हुआ है। अब प्रार्थना करते, ध्यान रखिए ये जो आठ मंत्र आप पढ़ते हो, आठ मंत्र का नाम आप क्या बोलते हो? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति समझते हैं? स्तुति मतलब ग्लोरीफाई करना। हे प्रभु तुम संसार का स्वामी हो, तुमने सूरज बनाया, चांद बनाया, तुमने लॉ ऑफ नेचर बनाया, तुमने एक खूबसूरत शरीर दिया, ये सब स्तुति है। प्रार्थना क्या है? जब हम वी आस्क समथिंग, जब हम कुछ मांगते हैं, माँ बाप से आप कुछ मांगते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं, वो प्रार्थना है। उपासना क्या है? जब हम उसके साथ कम्यून करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, मिलने के लिए, यूनियन के लिए जो हमारा एफर्ट्स होता है वो उपासना है, जिसको आप योग कहते हो, भक्त कहते हो। तो इस मंत्र में प्रार्थना है। अब प्रार्थना क्या है? यत् कामा तेजुहुम तत् न अस्तु वयम् स्याम पतयोरयीणाम्। हे प्रभु जिस इच्छा से हम तुम्हारे लिए अपनी भक्ति अर्पित करते हैं उनको तुम पूरा करो। हम सारे संसार के धन समृद्धि का स्वामी बने। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है? ये ऑनेस्ट प्रोक्लेमेशन है। हर मनुष्य चार चीजों के पीछे पड़ा है, हर मनुष्य। और हमने इनको बुरा नहीं माना, मतलब हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने इनको कोई, जैसे कि आजकल हमें पढ़ाया जाता है खास करके मॉडर्न हिंदुइज्म में कि दुनिया मोह माया है, ये छोड़ो, ये धन संपत्ति आपको बर्बाद करने वाले, इनको छोड़ो। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी कहाँ छोड़ूं? हमारे आश्रम में छोड़ जाओ, हमें दे जाओ, हम अपने आश्रम में लेंगे। तो मतलब मेरा आश्रम तो फाइव स्टार होटल बने पर तुम्हारा घर झपड़ी बन जाए क्योंकि तुम स्पिरिचुअल बनोगे। सो इट्स ए फुल ऑफ हिपोक्रेसी है। हमारे यहां तो वेद से लेकर यहां तक मनुष्य के हर वो एस्पिरेशन को रेस्पेक्ट किया गया। जितनी भी वांट्स हैं, जितनी भी डिजायर्स हैं, किसी को एक्सक्लूड करने के लिए कोई मार्ग नहीं बताया। और क्या बताया? उसको बोला पुरुषार्थ चतुष्टयम्। मतलब ये चार पुरुषार्थ हैं, दीज आर द फोर ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं। इसको हमें रेस्पेक्टफुली लेने की जरूरत है, इसको भी ऑनर करने की जरूरत है ना। किसी भी चीज को आप ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, वो तो ज्यादा प्यार भी खतरनाक होता है ना, ज्यादा नफरत भी खतरनाक है, ज्यादा प्यार भी खतरनाक है। कोई भी चीज ज्यादा होता है वो तो खतरनाक होता है। मेडिसिन खाते हैं, ज्यादा खाएं तो भी नुकसान, कम खाएं तो भी नुकसान। मीठा अच्छा लगता है, ज्यादा खाएं तो भी नुकसान, कम खाएं तो भी नुकसान. एनीथिंग व्हिच एक्सट्रीम इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयत, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक्सट्रीम के चक्कर में आप कहोगे ये बेकार है, नहीं बोला. धर्मार्थ काम मोक्ष, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य के जीवन में, किसी भी मनुष्य के अंदर जितने भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होते हैं, उनको चार तरह से क्लासिफाई किया. हर मनुष्य चाहता है बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा, कि मैं कुछ अच्छा करूं. अच्छा समझते हैं, डूइंग समथिंग गुड. आप कहेंगे हर मनुष्य क्यों कहते हो, चोर भी हैं, माफिया हैं, टेररिस्ट हैं, और बहुत सारे गंदे लोग हैं, क्रूवल लोग हैं, वो कहां अच्छा कर, नहीं वो भी कर रहे. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो जिसको अच्छा मानते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी है. जब एक टेररिस्ट लोगों को मारता है, खून करता है, बम फेंकता है, तो इसीलिए वो थोड़ा करता है कि किसी ने बोल दिया वो करता है. वो कन्विंस्ड है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं अच्छा कर रहा हूं. वो आप उसकी कन्विक्शन पर क्वेश्चन उठाइए कि उसका इंटेलेक्ट वीक है, उसका समझदारी खराब है, वो गलत को सही बोल रहा है, सही को गलत बोल रहा है. हम भी गलत डिसीजन लेते हैं, पर उसका इंटेंशन क्या है, जो मैं कर रहा हूं मैं अच्छा कर रहा हूं. मतलब जब चोर चोरी करता है, अगर वो ये सोच के चोरी करे कि चोरी बुरा है, वो चोरी कर ही नहीं सकता ना. अच्छा वाला आदमी भी जब बुरा काम करता है कब करता है, किसी ना किसी तरह जब उसका इंटेलेक्ट ब्लॉक्ड हो जाता है. इंटेलेक्ट का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही है ये गलत है, ये दिन है ये रात है, ये अंधेरा है ये प्रकाश है. ये काम होता है आपकी बुद्धि का, आपके इंटेलेक्ट का. जब ये ब्लॉक्ड हो जाता है, काम नहीं करता है. और ये क्यों ब्लॉक्ड होता है, कितने एक्सट्रीम इमोशन हो, गुस्से का, प्यार का, इल्यूजन का, इग्नोरेंस का, लालच का, किसी भी चीज का हो सकता है. जब बहुत एक्सट्रीम होता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो फिर आप सही को गलत, गलत को सही समझते हो, खैर वो एक अलग बात है. तो हर व्यक्ति धर्म अच्छा करना चाहता है, वो जो अच्छा करना इसको धर्म कहते हैं. वो कितना कर पाता है नहीं कर पाता है, उसकी कितनी कंपल्शन है, कितनी मजबूरियां हैं, वो अलग बात है. और कितनी उसकी दिमाग क्लियर है, अच्छा क्या है बुरा क्या है को ठीक से समझे. पर हर ह्यूमन बीइंग, डाकू से बड़ा डाकू भी किसी ना किसी के लिए अच्छा करता है, किसी के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, या किसी के लिए तो अच्छा करता ही. वैसे फैक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, जो चोरी करते हैं ना, चोर, चोर का मतलब होता है जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है. पर चोर भी बिना सच बोले चोरी नहीं कर सकता ना. मतलब चोर के जो ग्रुप होते हैं, जो गैंग होता है, वो गैंग में यू हैव टू ऑनेस्ट योर गैंग मेंबर्स. अगर आप अपने गैंग मेंबर के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो, या तो आपको मार देंगे, फिर आगे से चोरी कर नहीं सकते हो, क्योंकि एक दूसरे को हेल्प कैसे करोगे. वो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो चाहिए ही चाहिए ना. बुरा काम करो तो भी ऑनेस्टी चाहिए जी. तो धर्म इसी को कहते हैं, धर्म, अच्छा काम करना है ना, हर व्यक्ति को इच्छा है. अर्थ पैसा, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर मनुष्य को चाहिए. हर मनुष्य चाहता है मेरे पास धन हो, संपत्ति हो. कोई कम चाहता है, कोई ज्यादा चाहता है, कोई छुपा के चाहता है, कोई दिखा के चाहता है. आम लोग सीधे साधे, इनोसेंट, ऑनेस्ट हैं, दिखा के बोलते हैं पैसे चाहिए. जो थोड़े डिसऑनेस्ट होते हैं वो बाबा बन जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं. पैसा माया है, इल्यूजन है, पर छुपा के सारे है ना, करोड़ों करोड़ों ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक करते रहे. तो धन चाहिए, ह्यूमन नेचर है. प्रॉस्परिटी, काम, सेंसुअल प्लेजर है. हमारे जो सेंसेस है, शरीर की जी भी भूख है, इंद्रियों का भी अपना भूख है, नीड है, उनको फुलफिल करना काम है. ये भी ह्यूमन नेचर है, ये तो प्राणी मात्र का नेचर है. ह्यूमन क्यों, हर प्राणी का नेचर है. और मुख्य मुख्य फ्रीडम लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम व्हाट, दुख ना हो, दुख से निवृत्ति चाहिए। तो हर व्यक्ति जो भी लाइफ में करता है, आप में कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा है, क्यों करते हैं, इसीलिए कि दुख अभी ना हो, प्रेजेंट में दुख ना हो, फ्यूचर में भी ना हो, इसीलिए ना। क्या पैसा संचय करते हो, आगे बीमार पड़े तो काम आए, जो भी हो, दुख नहीं हो। जब उस दुख से एब्सोल्युटली फ्रीडम मिल जाए, उसको हम कहते हैं लिबरेशन, मुक्ति। पर टेम्पररीली भी आजादी भी तो चाहिए। तो वो जो मोक्ष, हमें दुख से फ्रीडम चाहिए, वो टेम्पररी फ्रीडम भी और परमानेंट फ्रीडम दोनों चाहिए हमें। हमें प्रेजेंटली काम चलाओ भी थोड़ा चाहिए, दुख ना हो, और हमारे लिए ये भी एफर्ट्स करते हैं कि परमानेंटली हमारे लाइफ में कोई दुख ना हो। तो हर मनुष्य चार चीजों के लिए कॉन्स्टेंटली, डिलिबरेटली, डिलिबरेटली, नोइंगली, अननोइंगली काम करता रहता है। अगर कोई कहे कि कोई काम नहीं कर रहा है, सोता रहता है, वो सोता भी इसीलिए कि यही चार चीजें पाने के लिए। एवरी सिंगल एक्ट, हर वो छोटा से बड़ा काम हम करते हैं, उसके बैकग्राउंड में इनमें से कोई होता है, धर्म, अर्थ, काम, मुख्य। ये नेचुरल है, और इसीलिए हमारे वेद इस चीज को ना इसको बुरा कहता है ना अच्छा कहता है। अलग अलग मंत्रों में आता है कि हम धन के स्वामी बने, इसमें क्या बुरी बात है। हाँ, इतना ध्यान रखना है बुरे रास्ते पर ना कमाए, गलत गलत तरीके से पैसा ना कमाए, और पैसे के लिए पूरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, और सारी दुनिया के को बर्बाद ना करें। ये बेसिक पॉइंट होना चाहिए। जब आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं कि पैसे के लिए आप सब कुछ को कंप्रोमाइज ना करें, और पैसे कमाने के लिए कोई इलीगल या इमोरल रास्ता ना लें, तो हर पैसा अच्छा है, हर एक को कमाने की जो अच्छा बुरा की बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्या कहा, वयम श्याम, वयम श्याम पतयो रईणा। रई कहते हैं धन, रई संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी। हम धन के स्वामी, पति कहते हैं स्वामी, मास्टर्स बने। अच्छा, तो आप कहोगे चलो ये तो समझ में आया कि हर मनुष्य धन चाहता है, धर्म अर्थ काम मुख्य चाहते हैं। इस मंत्र में धन की प्रार्थना की गई, रही धन की प्रार्थना की गई। अच्छा, बाय द वे, वो आगे जाने से पहले एक चीज क्लियर, जब हम धन की बात करते हैं, वेल्थ की, इट्स नॉट ओनली द मनी जो छप करके आता है, वो डॉलर या रुपए में नहीं, जिससे भी तुम्हारे अंदर तुम्हें जो भी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, जैसे जो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पावर उनका धन है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए मनी जो जो जिसको आप डॉलर नोट कहते हैं वो उनकी धन है, जो ज्ञानी है उनके लिए ज्ञान धन है, जो सुंदर है उनका रूप उनका धन है, हर हर चीजें धन है। जिससे भी हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है, वो पावर हो, नॉलेज हो, वो ब्यूटी हो, वो मनी हो, वो घर हो, वो आर्मी हो, वो किसी भी एंगल से, वो फिजिकल पावर हो, वो पॉलिटिकल पावर हो, वो इंटेलेक्चुअल पावर हो, ये सब शक्ति के अलग अलग, पावर के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। इवन स्पिरिचुअल पावर भी, जो वो भी एक पावर होता है, धन होता है स्पिरिचुअलिटी। तुम्हारे जो अच्छे गुण है वो भी तुम्हारा धन है। तो धन तो कुछ भी हो सकता है। तो हम प्रभु से क्यों प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे धनों का स्वामी बनाओ, क्योंकि बात है, कोई अच्छी चीजें भी प्रार्थना कर सकते थे, अच्छी चीजें भी प्रार्थना करते हैं, धन की भी प्रार्थना करते हैं। अब ये मिस परसेप्शन बन सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मतलब इसका भाव है कि हम परमात्मा से कहते हैं प्रभु हमें धनी बनाओ, तो इसका मतलब परमात्मा धनी बनाता होगा या बनाएगा, यही सोच के तो करते हैं, या तो वो बनाता होगा या ये सोच के हम प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें धनी बना दो, जिसे कि प्रभु बना दे। ऐसा नहीं होता है कि आपकी प्रार्थना से प्रभु किसी को धनी बनाता है या गरीब बनाता है, या पावरफुल बनाता है या पावरफुल नहीं बनाता है, या सक्सेसफुल बनाता है या आपको फेल करता है। पर प्रभु कुछ करने धरने वाला नहीं है, वो तो हम अगले जो जो लास्ट के मंत्र में चर्चा करेंगे, और जब हम भक्ति की टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे उसमें डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। क्या परमात्मा की प्रार्थना करने से परमात्मा कुछ नहीं करता है? ये तो आपने बड़ी अजीब बात कही भाई, परमात्मा को प्रार्थना करो कुछ करता नहीं, तो फिर करते क्यों भाई हम प्रार्थना? ये तो बेकार है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, इतने सालों से हमने बेकार किया। नहीं, प्रार्थना का अपना फल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर परमात्मा, अगर आपकी प्रार्थना से परमात्मा खुश होने लगे और हमारी प्रार्थना को सुनने लगे, छोड़िए देश दुनिया की बातें, हमारे ह्यूमन सोसाइटी का क्या क्या बर्बादी, कितना कितना है ना प्रॉब्लम होगा। सोचिए, चोर भी प्रार्थना करेगा ना कि प्रभु रात को ठीक ठीक बिता दो, आज बढ़िया सा चोरी हो जाए, तो आप भी तो प्रार्थना करोगे ना हे प्रभु कोई चोर ना आए। और उस दिन उस रात को फिर तीसरा आदमी भी प्रार्थना कर रहा है, पुलिस वाला, कि बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है, चोर तो पकड़ा दो आज रात को। अब परमात्मा किसका सुनेगा? आप कहोगे जी जिसकी प्रार्थना में ताकत होगी उसका सुनेगा, चोर की प्रार्थना में काफी भक्ति थी फिर परमात्मा चोर को सुनने लगे और चोरों को यह पता लग जाए, बस चोरी करने से पहले दिल लगा के प्रार्थना करो, ये घर वालों की प्रार्थना भी फेल, पुलिस की भी प्रार्थना फेल, तो सारे दुनिया में तो चोरों का ही राज होगा ना, तुम्हारा राज थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर परमात्मा सचमुच हमारी आपकी प्रार्थना सुनता, तब तो फिर सारे चोर चक्के बेईमान माफिया डाकू यही राज करते। और देखो पहले भी जो डाकू लोग जाते थे, आजकल तो डाकू खत्म हो गए, एक आधा कोई मिलता होगा, जनरली नहीं है। इवन आज से 30-40 साल पहले भी बहुत सारे डाकू होते थे भारत में, चंबल में, और वो साउथ के वो वीरप्पन ना, वो बड़े सारे डाकू होते थे। और हर डाकू जब जाता है ना डाका डालने के लिए, तो देवी मंदिर जाएगा और लंबा सा तिलक लगा के पूजा पाठ करके जाता था कि डाका ठीक ठाक हो जाए। प्रार्थना परमात्मा, प्रार्थना से परमात्मा खुश नहीं होता है, ना आपके लिए कुछ अलग करता है। हम परमात्मा की संतान है, प्रजापति है, हम सबका स्वामी वो है, चोर का भी, अच्छा का भी, बुरा का भी, कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, इंसान का भी, सबका स्वामी वही है। तो फिर वो सब पर कृपा करता है, तो उसकी कृपा तुम्हें मिलती है। जिस दिन तुम डिजर्व करते हो कृपा पाने के लिए, तो तुम्हें फील होने लगता है। तो फिर प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओन इंटेंशन। और ऑनेस्टी के साथ जब आप अपने इंटेंशन को, ये जो मंत्र में जो बताया जाता है, ये प्रार्थना नहीं है, ये सिर्फ इंटेंशन की एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है। हमें धनी बनने की इच्छा है, मुझे ज्ञानी बनने की इच्छा है, मुझे शक्तिमान बनने की इच्छा है, मुझे जो भी बनने की इच्छा है, मैं बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे एफर्ट्स करना है। एफर्ट्स आप तब करेंगे जब आपके अंदर डिलिबरेशन हो, जब आपके अंदर ये सोचो समझो कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन ज्ञान चाहिए, मुझे पावर चाहिए, जो भी आपको चाहिए। पहले आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, फिर जब आप पक्का कर देते हैं, कंफर्म करते हैं मुझे चाहिए, देन उसके लिए आप एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स करते करते अगर आप प्रभु के प्रति भक्ति रखते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी अजीब सी कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि अगर मेरे करते हुए कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो परमात्मा है मेरे साथ देने के लिए। अगेन, परमात्मा तब भी नहीं साथ देने वाला, पर वो जो आपकी कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ परमात्मा है। अगर आप परमात्मा में भरोसा करते हो, अगर आप परमात्मा को ऑनेस्टली मानते हो, अगर आपकी प्रार्थना में ऑनेस्टी है, तो फिर आपको ये फील होगा, वो रॉन्ग है राइट है दैट्स ए डिफरेंट थिंग, आपको ये फील होगा कि मेरे साथ मेरे प्रभु है, कुछ मेरे से गलती या गड़बड़ हो जाए, ही विल बी देयर टू सपोर्ट मी। ये जो भाव है बड़े से बड़े कमजोर लोगों के अंदर भी ताकत ले आता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है, आप पहाड़ भी तोड़ सकते हो। अब एक छोटी सी बात करके बात खत्म करते हैं। ये बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े जो माफियाओं के जो सरदार होते हैं, उनकी पर्सनालिटी आप देखेंगे मोस्टली फिजिकली बड़े कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, दुबले पतले होते हैं, दो थप्पड़ मारोगे भी गिर जाएंगे। फिर इतने बड़े बड़े माफिया एम्पायर कैसे खड़ा कर रखा है, ये पॉलिटिकल लीडर पूरी दुनिया पर कैसे राज करते हैं। सपोज अमेरिका का प्रेसिडेंट लेंगे, आजकल का प्रेसिडेंट बेचारा बुजुर्ग है, वैसे भी बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता है, पर सारी दुनिया पर राज तो करता है ना। कैसे, किस कॉन्फिडेंस से बात करता है, उसको पता है मेरे पीछे कौन है, अमेरिकन आर्मी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन सिस्टम है ना। तो प्रेसिडेंट जब कुछ बोलता है तो वो अपने पावर से नहीं, उसको पता है कि मेरे पीछे कौन है। किसी सोमालिया का प्रेसिडेंट का इतना क्यों नहीं होता, वो कितना फिजिकली पावरफुल हो सोमालिया का प्रेसिडेंट, इथियोपिया का प्रेसिडेंट कितना भी स्ट्रांग हो, बोल सकता है क्यों, उसको पता है मेरे पीछे कौन है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये दुनिया में राज करने देता है आप। और स्पिरिचुअली जब आप ये फील करने लगते हैं मेरे पीछे परमात्मा है, तो आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होता है और तब आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो ये दो मंत्रों की व्याख्या हमने आज की, अगले दो मंत्र के अगली बार करेंगे। बस एक बस इस मंत्र का जो हिंदी अनुवाद है वो करके चलते हैं। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है, हे तू रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। हे तू रहित अनुराग, द डिवोशन विदाउट एनी कंडीशन, प्लीज गिव मी दैट एबिलिटी टू डिवोट माई सेल्फ टुवर्ड्स यू, एंड दैट डिवोशन विच शुड बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और विदाउट एनी कॉज। तो इसी के साथ दोनों मंत्रों की व्याख्या समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।